Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. Aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur charcha karenge. Charcha ke liye aaj hamare saath studio mein aamantrit hain varishth aarthik visheshajna Puneet Jain. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद पुनीत. थैंक यू राजेश.
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ राजेश.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन ओवर 3%. सेंसेक्स प्लंजेस नियरली 2,500 पॉइंट्स. निफ्टी होल्ड्स 23,000 लेवल. गवर्नमेंट अप्रूव्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. And global crude oil prices rise.
आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक 3% से अधिक लुढ़के. सेंसेक्स में लगभग 2,500 अंकों की गिरावट. निफ्टी 23,000 के स्तर पर दर्ज. पश्चिमी एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों के लिए सरकार ने सहायता योजना की शुरुआत की. और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर बाजारों में आज एक बार फिर बिकवाली हावी रही और सूचकांक मंदी के दबाव में नजर आए. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 3.3% की बड़ी गिरावट से 2,497 अंक लुढ़ककर 74,207 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 3.3% के नुकसान से 776 अंक की गिरावट से 23,202 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार की शुरुआत में आज वैश्विक गिरावट का दबाव साफ नजर आया और बाजार में चौतरफा बिकवाली रही. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व के सतर्कतापूर्ण बयानों से बाजार में पिछले 3 कारोबारी सत्र की बढ़त को आज एक ही दिन में कमा दिया.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस प्लंज्ड ओवर 3% टुडे अमिड अ ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ. द सेंसेक्स नोज डाइव्ड 2,497 पॉइंट्स और 3.26% टू क्लोज एट 74,207, वाइल द निफ्टी टंबल्ड 776 पॉइंट्स और 3.26% टू सेटल एट 23,002. Earlier, the indices opened with a sharp gap down of around 2.5% following global negative cues and continued to trade within that range for most of the day, eventually closing with deeper cuts. Meanwhile, the markets wiped out the gains of the past 3 sessions in a single day as cautious commentary from the Federal Reserve along with escalating tensions in West Asia weighed heavily on investor sentiments.
सेंसेक्स पैक की सभी 3 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज रहा. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में इटरनल 5.6%, बजाज फाइनेंस 5.4% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.2% के बड़े नुकसान से बंद हुए.
Among the sectoral indices of the BSE, all sectors ended in negative territory. Among the top laggards, auto cracked almost 4.1%, realty shed 3.8%. And financial services lost nearly 3.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,192 companies declined, 1,051 advanced and 161 remained unchanged.
गुड़ी पड़वा के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा. हालांकि डॉलर सूचकांक कारोबार के दौरान 100.1 पर नजर आया. पुनीत, शेयर बाजार की दशा और दिशा क्या कुछ समझ में आता है? एक आम निवेशक क्या करे ऐसे दौर में जब चौतरफा कहीं ना कहीं निराशा या घबराहट दिखाई दे रही है साफ साफ?
बिल्कुल अमित, आपने सही कहा कि ये काफी डिफिकल्ट टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर मार्केट में भी और दूसरे एसेट क्लासेस में अगर आप देखें तो वहां भी बहुत वॉलेटिलिटी है। एक एक परेशानी होती है कि बाजार एक तरफा गिरता है या बढ़ता है, और दूसरी परेशानी होती है कि बाजार की डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती कि वो तेजी है या मंदी है, और निवेशक जो उसको ये वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये वो दौर है, और देखिए ये शायद दौर अभी थोड़े समय और रहेगा। ये वॉलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव बाजार में, शार्प उतार चढ़ाव, आपने बताया कि तीन दिन की जो बढ़त थी पिछले, वो आज एक ही दिन में वो बाजारों ने वो गिवअप कर दी। तो मुझे लगता है कि ये समय कॉशियस रहने का है, इसमें एडवेंचरस डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, या जल्दी पैसा बनाना या जल्दी रिकवर करना लॉस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट्स जो है उसको उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, और यदि आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो उस पैसे को धीरे धीरे बाजारों में लगाएं जहां भी आपको ठीक लगे, जहां भी करेक्शन आए। देखिए सभी एसेट्स में हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आ रहे हैं, तो वहां पर एक अच्छा मौका भी है इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन इसको बहुत सोच समझ कर संभल कर निवेश करना चाहिए। मैं अभी राय दे सकता हूं।
पुनीत, आपने कहा सोच समझ के, क्योंकि कुछ इस तरह के कंपनियों के शेयर जो कि काफी अपने हाई से बहुत नीचे आ चुके हैं, तो ये पैमाना कैसे निर्धारित हो कि इन कंपनियों में अभी भी कहीं भरोसा कायम किया जा सकता है? ठीक है, अगर मुझे सारे अपने पैसे एक साथ नहीं लगाने, थोड़े थोड़े लगाने, तो वो कौन से प्रमुख क्षेत्र होंगे ऐसे समय, या वो कौन सी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जहां पे निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है?
देखिए अमित, ये बिल्कुल एक बहुत आमतौर पे तो काफी मुश्किल सवाल है, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए आपके पास कि कैसे किसी कंपनी के अंदर, यदि आप शेयर मार्केट में निवेशक हैं तो आप कैसे किसी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, इसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए जो आम आदमी के पास, आम निवेशक के पास नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर राय ये दी जाती है कि आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। म्यूचुअल फंड में कोई खास ऐसी कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक तो डाइवर्सिफाइड बहुत है कि आप एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और वो आगे 20 कंपनियों में या 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क जो है वो कम हो जाता है। दूसरा यह है, फिर भी मैं कहूंगा जो सीधे निवेश करते हैं शेयर बाजार में, उन्हें कंपनियों की, जिस कंपनियों में वो पैसा लगाना चाहते हैं, वो ये देखें कि एक तो इस वक्त ज्यादातर मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में पैसा लगाना चाहिए, वो सेफर है, सेफ्टी की तरफ ज्यादा रुख रखना चाहिए। दूसरा, जहां पर वैल्यूएशंस, या जिसको हम पी मल्टीपल्स कह सकते हैं, या प्राइस टू बुक वैल्यू है, या जहां पर अर्निंग स्ट्रांग है, वहां पर ग्रोथ स्ट्रांग है, तो ऐसी कंपनियों का चयन करके वहां पर निवेश करना चाहिए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्लोली ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, एकदम पैसा न लगाएं। इस सबसे बड़ी, देखिए बाजारों में आप कहीं भी निवेश कीजिए, मैं एक अपने अनुभव से ये बात कहता हूं कि कहीं भी निवेश कीजिए, लेकिन अगर आपने इस पर्पस से इन्वेस्ट किया है कि जल्दी मैं पैसा बना लूंगा, या बहुत जल्दबाजी में जो पैसा कमाने की इच्छा रहती है, वो इस वक्त काफी खतरनाक हो सकती है।
सो पुनीत, हाउ डिड द सेक्टरल परफॉर्मेंसेस टुडे रिवील द मार्केट्स असेसमेंट ऑफ रिस्क विद बैंक्स, आईटी, ऑटो एंड रियल्टी लीडिंग द फॉल, व्हाइल द ऑयल एंड गैस नेम्स लाइक ओएनजीसी एंड कोल इंडिया वर अमंग द फ्यू गेनर्स? What does this tell us about the underlying economic concerns?
So, Rajesh, in fact, today was a day when there was a confluence of three negative factors in the market. One, of course, was the fact that the crude oil prices have gone up, energy prices have gone up across the world, and that is causing a lot of concern vis-a-vis inflation and ability of industries to be able to grow. And to be able to maintain the supply chains. Second, of course, was the comments from Federal Reserve last night, where they were conservative in terms of cutting interest rates further. And third, of course, we had this unfortunate incident at a large private bank in India, where the chairman resigned and there was a controversy. So all these three factors kind of came together, and we saw selling. If you see, these three factors are affecting the sectors today. So autos, which are affected by energy prices, high crude oil prices, they took the largest hit. They fell about 4%. We saw financial services selling by FIIs in banks and financial services. So clearly, they were kind of, these sectors were affected by the news flow today.
So how did this higher for longer stance that you talked about, driven by sticky inflation and energy price uncertainty, compound the pressure of Indian on the Indian equities and rupee expectations.
So, Rajesh, if the U.S. Fed, which was expected to keep to cut interest rates further and more aggressively in the current year, if the U.S. Fed does not cut rates aggressively and they maintain that they're going to keep interest rates higher for a longer period of time, then it will lead to distortion in fund flows to emerging markets, to other Asia-Pacific markets. And therefore, I think there was this fear that the FI money, which was expected to flow to emerging markets after further interest rate cuts, that wouldn't happen. So I think that was one of the major factors why the FII selling came and these...
They've taken out nearly 77,000 crore rupees from the Indian market so far. So how does that imply for near-term valuations and liquidity?
So to some extent, valuations are now becoming attractive. If you ask me, a PE multiple on the Nifty is now close to 20 times, which used to be the norm earlier. And then we saw this PE multiple rise to more than 25, 26. So I think as far as valuation is concerned, Indian markets are now coming in the comfort zone. I wouldn't say they're very attractive right now, but they're definitely in a comfort zone. But going forward, unless we see large scale fund inflows, we see money coming in from FIIs, even from domestic investors, unless fund flows increase, I don't think markets will go up sharply.
Puneet, iske saath saath rupee pe jo dabav tha, halanki aaj chunki gudi padwa karna bazaar band raha hamara videshi mudra bazaar, lekin rupiya jo itne dabav mein hai aur dollar index abhi bhi 100 se upar bana hua hai, ye kya darshata hai, jabki America seedhe taur pe yuddh mein shamil hai, उसके बावजूद डॉलर को रिटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा है?
नहीं, देखिए, डॉलर जब से अमेरिका बल्कि युद्ध में आया है तब से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है. उसका कारण यह है कि जो एक तो एक्सपेक्टेशन जो थी इंटरेस्ट रेट कट की, वो एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, तो अमेरिका में हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से हमने देखा कि गवर्नमेंट वहां पर 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.31 आ गई. तो जैसे इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ेंगे तो डॉलर जो है वो अमेरिका में जाएगा, तो एक खास बात यह है. दूसरा, आप देखेंगे कि गोल्ड में की प्राइसेस में कमी आई है, सिल्वर में कमी आई है, तो यानी पैसा जो है, डॉलर जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जा रहा है. और देखिए, रुपए पे काफी दबाव बना हुआ था दो तीन कारणों से. एक तो जो ट्रेड डिसरप्शंस हैं उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है, फिर रेमिटेंसेस को लेकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसको लेकर काफी चिंताएं हैं. हालांकि भारत के पास सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है, हमारे पास करीब करीब अभी भी $700 बिलियन के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल पोजिशन है. पर मार्केट्स थोड़ी सी एंग्शियस है. मुझे लगता है हमारी स्थिति बहुत बेहतर है बाकी देशों से, पर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस हैं उनको देखते हुए रुपये पे प्रेशर बना रहेगा शायद.
पुरी, यू सेड द इन्वेस्टर्स नीड टू बी कॉशियस इन दिस पीरियड. हाउ कैन यू बी कॉशियस, यू नो, हाउ कैन यू नॉट वरी, व्हाट शुड दे बी डूइंग?
नो, आई थिंक बाय कॉशन आई रियली इंटेंडेड दैट वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे, बिकॉज इफ द मार्केट्स फॉल वेरी शार्पली, पीपल यूजुअली नो दे गेट एक्साइटेड एंड दे वांट टू बाय, दे फील दैट प्राइसेस हैव फॉलन, देयरफॉर दे आर चीपर. सो स्टॉक्स डोंट बिकम चीपर जस्ट बिकॉज द प्राइसेस फॉल. Price becomes cheaper when companies with strong earnings and they come down to very low PE multiples, or they become very attractively priced vis-a-vis growth. So that is only
some time. Positive news you want to give them, something to lift their sentiments.
My assessment, this is because this is, of course, these are very fluid times and it's very difficult to say. I think this should be the market where investors should just aim to survive. They should not look to recoup their losses. They should not be in a hurry to make money. Should not try to capitalize on some opportunity which just comes up overnight. I think the mindset for the next couple of months, when all this turmoil is going on in the global markets, we should survive the markets. We should not incur large losses. We should not run short of cash. Sometimes you have liquidity problems. So this is a time to stay cautious by remaining low key. Wait for better times. I'm sure in next 2 to 3 months we'll get excellent opportunities to invest and to make gains. But this is not the time to be adventurous.
सतर्क रहें लेकिन निरंतर निवेशित रहें. चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण आज एशियाई बाजारों में भारी गिरावट रही. जापान का निकेई 3.4%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.7%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.8% की गिरावट से बंद हुआ. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी नजर आई। कारोबार के दौरान फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 1.8% से 2.4% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
Wall Street ended sharply lower yesterday after fresh economic data and comments from the Federal Reserve chief fueled concerns that inflation may remain persistent in the country. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average plunged over 1.6%, the Nasdaq Composite Index shed nearly 1.5%, and the S&P 500 dropped almost 1.4%. Earlier, the Federal Reserve kept its lending rate unchanged and signaled it still expects one rate cut this year without indicating the timing.
The committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. From last September through December, we lowered our policy rate 0.75 percentage point, bringing it within a range of plausible estimates of neutral. This normalization of our policy stance should continue to help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend toward 2%. But the implications of events in the Middle East for the U.S. economy are uncertain. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration of the potential effects on the economy.
Meanwhile, the U.S. Labor Department reported that the Producer Price Index, PPI, rose by 0.7% in February, up from 0.5% in January. But it very quickly, one rate cut is still there. Optimism is there?
Yeah, it's kind of optimism, but I think it is optimism. It is kind of a statement of intent rather than a plan for Fed. If you look at the inflation data which came yesterday, the PPI data, 0.7% increase is huge in PPI, and that will translate into consumer price inflation. PPI is like kind of wholesale price index for India. So if you have the input prices going up by that sharply, then I'm sure it is inflation in America in the coming months will be quite substantial.
Moving on, the government has launched resilience and logistic intervention for export promotion relief scheme to support Indian exporters affected by the West Asia conflict. Addressing a press conference in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal today said that the government is coordinating with the key ministries and overseas missions to support exporters in view of the conflict. Mr. Agarwal said an interministerial group has also been set up under the Department of Commerce to address issues like logistics, warehousing and return of cargo. The secretary said that the Indian exporters to the Middle East are facing disruptions due to the ongoing regional tensions and impacting shipments and future trade. Now, this is also a positive step that the government has taken. So how do you see this?
So Rajesh, I think the trade aspect of the West Asia conflict for India is very significant. And therefore, I think if we look at the steps being taken by the government, they're very practical. They're really important for the exporters.
Okay, let's hear what the secretary said. The secretary, Commerce Secretary Rajesh Agarwal, said on this issue.
In terms of some of the cargoes which needs to come back, in terms of warehousing challenges, in terms of logistic challenges to bring back the cargo back to the market from, we are trying to listen to them and trying to respond to them, work with Ministry of Ports and Shipping, work with Department of Revenue, CBIC, and work with our missions in the Middle East to see whatever help we can extend to our exporters to resolve these issues.
पुनीत, बहुत संक्षेप में, सरकार का एक बयान कम से कम फौरी तौर पे कहीं ना कहीं राहत या एक भरोसा जगाता है, तो इस कदम से कितना भरोसा जगाने में कामयाब हो पाएंगे निर्यातकों के प्रति?
देखिए, ये जो कदम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निर्यातक और जो एक्सपोर्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब आप लॉजिस्टिक्स, जब आप शिपिंग के लिए फ्रेट बुक करते हैं, तो इंश्योरेंस उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके अंदर फ्रेट चार्जेस बहुत बड़ा फैक्टर है, और आज ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ज्यादा और कम की बात नहीं है, इसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको रेट ही नहीं मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा टू स्टेबलाइज द फ्रेट रेट्स, टू स्टेबलाइज इंश्योरेंस कॉस्ट, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी ये जो ट्रेड है रिज्यूम कर पाएगा टू सम एक्सटेंट।
नफरत डालने कुछ और खबरों पर सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू पीएनजी और परिवहन के उपयोग वाली सीएनजी की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि दो सप्ताह के भीतर लगभग 1,25,000 घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी की स्थिति में चिंताएं विद्यमान हैं, हालांकि पूरी तरह स्टॉक समाप्त होने की कोई भी आशंका नहीं है। संयुक्त सचिव ने कहा कि एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग में लगभग 94% की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि घबराहट में आकर बुकिंग करने वालों की संख्या में गिरावट भी आई है। सुश्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में सहयोग करने को कहा है और अतिरिक्त 10% वाणिज्यिक एलपीजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है।
भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और एमओईएफसीसी हैज ऑलरेडी एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स फॉर परमिटिंग द यूज ऑफ कैरोसिन एंड कोल एज एन अल्टरनेट फ्यूल। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है।
पुनीत, ये भी जैसा मैंने भी कहा था, निर्यातकों के प्रति सरकार का इस तरीके का भी एक भी बयान जो आता है वो आम जनता में एक भरोसा तो कायम करता ही करता है। अगर इस तरह के साथ साथ उसकी जो चिंताएं हैं अगर वो दूर करने के प्रयास होते हैं तो ये कितना बड़ा सार्थक कदम है।
देखिए, जो मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस हैं या फियर्स हैं कंज्यूमर्स के, वो बहुत बड़ा एक कदम होता है। जैसे आपने बताया कि पहले पैनिक बुकिंग होनी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, जिसके पास एक सिलेंडर है वो 4 सिलेंडर बुक करने लगे थे और डर के मारे। तो जब सरकार ये भरोसा देती है कि सफिशियंट अवेलेबिलिटी है फ्यूल की, तो आप ये पैनिक नहीं देखते।
और मुझे खत्म होने वाला
स्टॉक खत्म होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो गृहिणी है, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको एक शांति रहती है और वो एक नॉर्मल बिजनेस को रिज्यूम करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू मेंटेन बिजनेस एज यूजुअल। ये सेंटिमेंट कि बिजनेस जब कोई चीज खत्म होती है तब हमें उसकी कमी महसूस होती है, बट टू मेंटेन बिजनेस एज यूजुअल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सरकार के लिए। और मुझे लगता है ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में, इतने डिफिकल्ट टाइम्स में टू मेंटेन बिजनेस एज यूजुअल एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत सराहनीय कदम है।
क्योंकि ऐसे कदम में ना, ऐसे समय में बहुत जगह इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि होटल रेस्टोरेंट्स में उन्होंने आपको खाना देना बंद कर दिया है या इस तरह की जो चिंताएं जो थी, क्योंकि बहुत सारी ईटरीज चलती ही इसी दम पे थी।
बिल्कुल, हमें देखिए वही पैनिक रिएक्शन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअल स्टॉकआउट से। अब देखिए, बैंक में यदि एकदम आपके सारे पैसे निकालने के लिए पहुंच जाएंगे तो बैंक, बड़े से बड़ा बैंक भी फेल हो जाएगा। तो उसी प्रकार का एक वो है, काफी ऐसा नहीं मैं कहूंगा देश विरोधी ताकतों ने काफी कोशिश करी इस तरह की रूमर्स पैनिक क्रिएट करने की, रूमर्स क्रिएट करने की, पर सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला अभी तक।
एंड ऑल्सो पुनीत, द डॉकिंग ऑफ 3 ships इन द गुजरात पोर्ट हैज ऑल्सो लिफ्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। ओके,
एटलीस्ट समथिंग इज कमिंग। सो देर वॉज दिस नैरेटिव दैट नो दिस इट इज गोइंग टू स्टॉप कम्प्लीटली एंड पीपल वुड रश इन। आई थिंक वेन दिस काइंड ऑफ न्यूज कम्स इन दैट वी हैव सम स्टॉक विच इज कम इन, सम विच इज ऑन द वे, आई थिंक दैट इज प्योरली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टू क्रिएट द सेंटिमेंट दैट ओके दिस इज लाइफ एज यूजल, देर आर चैलेंजेस अहेड ऑफ अस। आई एम श्योर इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट सो फार गवर्नमेंट इज डन एक्सलेंट जॉब ऑफ मेंटेनिंग दिस।
सही समय पे सरकार ने जो जनमानस की जो चिंताएं थी उसको एड्रेस किया।
देखिए बिल्कुल, और पहले हमने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की खबर पढ़ी जिसमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने की बात थी, या यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं, एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, पीएनजी के हैं, सीएनजी के हैं, पेट्रोल डीजल के हैं। देखिए, सरकार जहां जहां भी एक शॉर्टेज की या पैनिक होने का संभावना है या नुकसान होने की संभावना है वहां पर टारगेटेड स्टेप लेना मुझे लगता है बहुत ही एक समझदारी का ये पॉलिसी है।
द मिनिस्ट्री हैज टाइम एंड अगेन बीन कम्युनिकेटिंग दैट वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स विद अस एंड वी वर आल्सो डिस्कसिंग अ व्हाइल बैक दैट स्टॉक वाइज यू नो वी आर एज अ कंट्री वी आर क्वाइट ओके एंड वी विल मैनेज एंड आल्सो वी हैव अल्टरनेट सोर्सेज आल्सो बीइंग लुक्ड एट टू गेट द ऑयल और टू गेट द गैस। So, what are the alternate sources that we can bank on? Of course, we have the Russian oil. We have legitimately, now we can go to them and take oil from them.
So interestingly, India over the past, and really, you know, when we talk about India, I think we must take a moment to look at what is happening to other countries, because that is what will tell us that if this government was not so proactive and we were not on such a good wicket, what can happen to us? If you look at neighboring countries like Pakistan, we look where now life has come to a complete standstill. There is practically no government work happening, no private business happening. The kind of human tragedy which is going to unfold as a result of that, I think, is going to be almost worse than what happened in pandemic. So if you look at India, we have this huge refining capacities, and almost all refineries are now working at 100% capacity. We have a sufficient stock of crude oil. Government has assured that we're not going to fall short of crude oil supplies. We're not going to fall short of PNG, natural gas supplies, either whether in the form of PNG or CNG or LNG, which is required for. And so I think if you look at what we have achieved in terms of stabilization of energy markets, it's remarkable, given the fact that India is such a huge country. See, we, of course, there are other countries which probably in the Western Hemisphere, which are able to, you know, get through this more easily. For India and countries in the Asia Pacific, the closure of Strait of Hormuz is an extremely important step, because almost 50-60% of our energy requirement was actually coming through this route.
Okay. Moving on, the global crude oil prices rose today as Iran attacked energy facilities across West Asia in retaliation for Israel's strike on its South Pars gas field. Brent crude was trading over 5.2% higher at $113.16 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading 0.6% up at $97.12 per barrel when reports last came in. Very quickly, Puneet, what are the likely second round effects of elevated crude prices on India's macro stability if Brent crude remains at the level that we have today?
So two primary issues. One, of course, is a balance of payment in terms of higher foreign exchange outgo for importing crude oil. So if the prices are almost 70-80% higher than where they were about a month back. So clearly that is a huge burden for us. It may translate into $100 billion extra outflow in the current year. Secondly, of course, is higher crude prices or energy prices will mean a higher inflation in India, which would hurt consumption.
Moving on, India said that recent attacks on energy installations across the Gulf region are deeply disturbing and risk further destabilizing an already uncertain global energy scenario. In a statement, External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks are unacceptable and need to cease. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson said that energy supply remains a major concern, with shipping routes also being impacted. He said LPG availability is under watch, adding that the government is prioritizing domestic consumers while actively working to diversify energy sources. Mr. Jaiswal said global leaders are in constant touch over the evolving situation in West Asia, and India has clearly conveyed its position on the issue. And also in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 4.2% down at 1,47,250 rupees per 10 grams, and silver was trading almost 7.1% lower at 2,30,660 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 4.3% की गिरावट से 1,46,004 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 7.3% की बड़ी गिरावट से 2,30,096 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, सोने और चांदी जितनी उम्मीदें जगाई थी शायद अब वो दम तोड़ती हुई नजर आती हैं, जबकि आमतौर पर शायद निवेशकों को भी लग रहा होगा कि युद्ध के समय में ये सबसे सुरक्षित निवेश है।
बिल्कुल, देखिए हमें जो इससे पता चलता है, हमें इतनी शार्प फॉल आया है गोल्ड और सिल्वर में कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है वो चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो निवेशक है वो जल्दबाजी ना करें निवेश करने के लिए, क्योंकि नया एक फाइनेंशियल मार्केट है और इसके लिए हमें वेट करना चाहिए फॉर करेक्शन।
पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। हालांकि समय की बात है, बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन फिर भी आपके पधारने का धन्यवाद।
धन्यवाद अमित।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन ओवर 3%, सेंसेक्स प्लंजेस नियरली 2,500 पॉइंट्स, निफ्टी होल्ड्स 23,000 लेवल। गवर्नमेंट अप्रूव्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।